13। अरे कोई दानवीर इस धरती पर आज बचा है क्या? कांपता हुआ वृद्ध स्वर कहीं से आया। आसपास के शांत वातावरण को चीरता हुआ सबने एकदम मुख मोड़े असीम आश्चर्य से। एक वृद्ध ब्राह्मण ने युद्ध में काम आए हुए अपने पुत्र का शव ढूंढ निकाला था, परंतु अंत संस्कार करने के लिए उपयुक्त धन भी उस निर्धन एकाकी वृद्ध के पास नहीं था। वह आर्त स्वर में चीखता हुआ जो मिला उसी जीवित आहत योद्धा के पास जाकर अपना झुर्रियों भरा हाथ सामने फैलाकर सारे सम्रांगण में घूम चुका था। युद्ध के दावा नल में मनुष्यता ही जलकर भस्म हो गई थी, इसीलिए कोई भी योद्धा उसकी पुकार पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। भीड़ देखकर आशान्वित होकर वह वहां आया था और जहां हम सब खड़े थे। योद्धाओं के घेरे में कौन सा महावीर अंतिम सांसें गिन रहा था इस बात का उसे कुछ भी पता न होने के कारण वह बाहर से ही चिल्ला रहा था। अरे कोई दानवीर इस धरती पर बचा है क्या? उसकी ग्रीवा डगमगा रही थी, हाथ के सहारे की लाठी कांप रही थी। उसके कांपते हुए कातर बोल जैसे ही घायल कर्ण की चेतना शून्य हुए कानों में पहुंचे, उन शब्दों से टिक डिक उसकी दिव्य आत्मा क्षण भर में द्रवित हो गई। उसका संपूर्ण शरीर एकदम विचित्र ढंग से कांप उठा। हाथ साथ न देने वाले कंठ के धागों को भी उसने क्षण भर में ठीक कर लिया। चित्रसेन की ओर देखता हुआ वह बोला नितांत स्पष्ट, चित्रसेन याचक। चित्रसेन तत्काल उठा, झटपट घेरे के बाहर जाकर उस वृद्ध ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले आया और लाकर अपने पिता के सम्मुख खड़ा कर दिया। उस वृद्ध के भूरे सफेद केश बिखर गए थे, झुर्रियों के जाल में आंखें धसी हुई थी, ग्रीवा डगमग थी। बोलो ब्रह्मवर आज्ञा। सामने हाथ फैलाए हुए उस वृद्ध को देखते ही उस घायल सेनापति के होंठ कांप उठे। उस महावीर के कंठ को से निकले हुए गाढ़े रक्त के प्रवाह को देखकर वह वृद्ध अपने पुत्र के निधन का भयानक दुख भी भूल गया। विनम्रतापूर्वक बोला कुछ नहीं अंगराज, कुछ नहीं। उस वृद्ध ने प्रत्येक अनेक बार कर्ण से दान लिया था। वह इस घायल स्थिति में एकाकी मरणोन्मुख दशा में पड़े हुए कर्ण से अब क्या मांग सकता था? यही ठीक यही समय था जब मैं आसपास खड़े हुए पांडवों को वास्तव में प्रथम कौंतेय को दिखा सकता था। उसी समय पांडवों को लौकिक और कर्ण को पारलौकिक से शस्त्र दिया जा सकता था। मैंने आगे बढ़कर उसके कान के पास जाकर कहा, इस वृद्ध के पास युद्ध में काम आए हुए अपने पुत्र का अंत संस्कार करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है, वह इसीलिए किसी दानवीर को ढूंढ रहा है। दानवीर, उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा। उसने अपनी आंखें एकदम झट से बंद कर ली, इधर उधर हाथ पैर हिलाकर वह छटपटाने लगा, विवशता से मुट्ठियां बंद करने लगा। उस याचक को क्या दान दिया जाए उसकी समझ में नहीं आ रहा था। समस्या सुलझ नहीं रही थी, छाती का लौत्राण जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होने लगा। क्या करेगा अब वह? उसकी दानवीरता इस अंतिम समय में कलंकित होने जा रही थी। लव शस्त्र तथा लव त्राण के अतिरिक्त आसपास के खड़े किसी योद्धा के शरीर पर टूटा फूटा मणि तक नहीं था। स्वर्ण किरीट शेष थे, परंतु वे पांडव के मस्तकों पर थे। उसके छटपटाते हुए हाथ पर अकस्मात एकदम रुक गए। कोई निश्चय कर उसने पुनः अपनी निमिलित आंखें खोली। उनसे एक अद्वितीय तेज उफन उफन कर बाहर आ रहा था। चित्रसेन पाषाण, उसने चित्रसेन को आज्ञा दी। उसने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला चित्रसेन उठा। वह जाकर दूर से एक पाषाण उठा लाया। चित्रसेन को सामने देखते ही उसके नीले नयन एक विलक्षण अज्ञात तेज से चमकने लगे। वह सारी शक्ति एकत्रित कर धड़ाधड़ कहने लगा, चित्रसेन उस पाषाण से मेरे मुख के सुनहले दांत दांत को तोड़कर वह याचक को। तनाव पड़ने के कारण वह क्षण भर रुका। कंठ में लगे हुए बाण के कारण होने वाली तीव्र यातनाओं को रोकने के लिए उसने आंखें कसकर मींच ली। चित्रसेन खड़ा खड़ा थर थर कांपने लगा। अपने पिता पर उसका अत्यंत प्रेम था। इस अंतिम समय में उसके चरणों पर पुष्प चढ़ाने के बजाय प्रत्यक्ष उसके दांत तोड़ने का कठिन महाकठिन कर्म वह कैसे कर सकता था? 25 वर्षीय उत्साहित तरुण का शरीर थर थर कांपने लगा, माथे पर श्वेत बिंदु संचित हो गए। चित्रसेन, उसका स्वर कठोर हो गया, लहूत्राण पर टकराने वाले बाण के फल जैसे उसकी आवाज थी, तुमको कुरुओं के सेनापति की यह आज्ञा है। चित्रसेन, उसकी आवाज में अधिकार की अद्भुत तीव्रता थी। उसकी आज्ञा का उल्लंघन आसपास खड़ा कोई योद्धा नहीं कर सकता था। आसपास खड़े योद्धाओं को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। सबकी डबडबाई हुई आंखें चित्रसेन पर स्थिर हो गई। वह अभी थर थर कांप रहा था। क्षण भर रणांगण में सिंह की तरह लड़ने वाला वह वीर इस समय शशक की तरह कांप रहा था। एक ही स्थान पर ऐसा स्तंभित हो गया था जैसे संज्ञा शून्य हो गया हो। उसके माथे पर से श्वेत बिंदु हाथ में लगे पाषाण पर टपक पड़े। चित्रसेन, उसके होंठ अब थरथराने लगे, आंखें आग बरसाने लगी। वह क्रुद्ध होकर अपने पुत्र की ओर देखने लगा। अवज्ञा करने वाले सैनिक की ओर जैसे सेनापति को देखना चाहिए वैसे। चित्रसेन झटपट आगे बढ़ा जैसे देह पर बिजली गिर पड़ी हो। कुछ भी हो, आखिर वह था तो उसी का अंकुर। चित्रसेन को आगे बढ़ते हुए देखकर उसकी आंखें आनंद से चमकने लगी। दूसरे क्षण उसने उनको कसकर मींच लिया और कंठ में होने वाली वेदना को अधिक अब दांतों को जड़ से उखड़ने वाली असह्य वेदना को सहन करने के लिए उसने अपने हाथों की दृढ़ मुट्ठियों को कस लिया। निमिलित नेत्रों के चारों ओर सुनहली त्वचा सिकुड़ गई। सदैव सूर्य स्त्रोत के पावन मंत्रों का उच्चारण करने वाला अपना निर्मल मुख उसने विस्फारित किया। पूर्ण विकसित डहडहे सूर्य पुष्प जैसा, सूर्य पुष्प के पराग दंड जैसे सघन कटे हुए शुभ्र दांत चमक उठे। उनमें दो दांत सुवा दांत की तरह संपूर्ण सोने से मढ़े हुए थे। वे पीली तेजस्वी किरणों फेंकने लगे। हृदय से उफन कराने वाले आवेग को प्रयत्नपूर्वक कंठ में रोक कर चित्रसेन ने पाषाण ऊंचा किया। बहुतों ने आंखें बंद कर ली। किसी भी युद्धभूमि पर साकार न हुआ होगा ऐसा सत्य कुरुक्षेत्र पर साकार हो रहा था। खाड खाड, दो ध्वनियां कुरुक्षेत्र की भूमि में विलीन हो गईं। हाथ से पत्थर फेंक कर न रुकने वाली सिसकी मेरे पिता सुन न सकेंगे वह उनको अच्छी नहीं लगेगी, यह सोचकर चित्रसेन तीर की तरह चारों ओर बने घेरे को तोड़कर सिसकता हुआ बाहर की ओर दौड़ा जैसे शक्तिपात हो गया हो। उस दानवीर के सुंदर सुनहले दांत टूटकर उसी के मुख में गिर पड़े। उन दांतों को जड़ से निकला हुआ रक्त गालों पर से बाहर बहता हुआ उसके कंठ के घाव के रक्त में मिलने लगा, टप टप टपकने लगा। आसपास योद्धाओं के अश्रु भी द्रवित होने लगे। उसने बड़े कष्ट से मुंह में से दांत हाथ में लिए। उसकी आंखें विलक्षण तेज से दीप्त हो रही थी। यदा कदा बनने वाला गड्ढा गाल पर बन रहा था। वह थरथराता हुआ टूटे फूटे स्वर में कहने लगा, याचक, यह दान रक्त रंजित, यह अपवित्र दान कैसे कैसे तुम्हारे पवित्र हाथ पर रखूं? पुनः सबके अंग रोमांचित हो गए। जीवन के संबंध में उसकी अपनी विचारधारा क्या थी या मेरे अतिरिक्त आसपास खड़ा कोई भी योद्धा नहीं समझ सकता था। यदि समझ भी जाता तो उस पर उसको कभी विश्वास न होता। हाथ में लगे दांतों पर से रक्त के चिन्ह कैसे मिटाए जाए यह समझ में न आने के कारण वह फिर असहाय हो गया। उसके चमकते हुए नीले नेत्रों से आंसुओं की अविरत धारा बहने लगी। डबडबाई आंखों से उसने अमीन टीले की ओर झुकते हुए आकाश में विद्यमान अपने पिता की ओर क्षण भर देखा, एकटक अविचल। दूसरे ही क्षण चेतना की एक अद्भुत गूढ़ सूक्ष्म तार उसको सचेत करती हुई चली गई। क्षण भर में जो अतर्क था उसको वह ऐसे ही करता आया था। आंखों से बहने वाले अश्रुओं की धारा में उसने हाथ में लगे दांत पकड़ लिए। आंखों से अश्रु अखंड रूप से अविरत बहते रहे, इसीलिए वह अविचल भाव से एकटक सूर्यबिंब की ओर देखता ही रहा। उसके गहन मन में भावनाओं का कैसा भयानक कोलाहल मचा हुआ था इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, स्वयं मैं भी नहीं कर सकता था। उसके सुनहरे दांतों पर लगा हुआ रक्त उसके विशुद्ध अश्रुओं से बह गया, दांत स्वच्छ हो गए। सूर्य किरणों में चमचम चमकने लगे, परावर्तित किरणें विकीर्ण करने लगे। यह देखकर उसके नेत्र आनंद और संतोष से चमकने लगे। कलाई की आधी टूटी हुई रजनीगंधा के माला से एक फूल निकालकर उसने दांतों पर रख दिया। वह दान अपने भव्य कपाल से लगाकर उसने हंसते हुए हाथ ऊंचा किया। याचक को दान देने के लिए अब वह दान सर्व विधिपूर्ण दान हो गया था। जगत में बहुतों ने दान किया होगा परंतु मृत्यु के द्वार पर इतना हृदय थर्रा देने वाला एकनिष्ठ अद्वितीय दान करने वाला कोई केवल वही जानता था, प्रथम पांडव ज्येष्ठ कौंते सूर्यपुत्र। आसपास के असंख्य मुखों से सजोद्गार बाहर निकले, धन्य धन्य थर थर कांपता हुआ वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा। अब वह दान स्वीकार करना ही था। कांपते हुए हाथों से उसने वह दान ग्रहण किया। उसके वृद्ध नेत्रों से निकले हुए कृतज्ञ आंसू उन दो सुनहले दांतों पर तथा टूटी हुई माला के रजनीगंधा के फूलों पर गिर पड़े। उस वृद्ध याचक को वंदन करने के लिए वह गर्दन झुकाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु कंठ में लगे हुए बाण के कारण वह झुक नहीं पा रहा था। वृद्ध से न रहा गया, वह बोला, दानवीर कर्ण, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह माता धन्य है। जिस भूमि में तुम्हारे विशाल हृदयादेह पाली है वह यह धरा धन्य है। दानवीर कर्ण, आर्यावर्त में तुम जैसा एक निष्ठ दानवीर न हुआ है न भविष्य में होगा। कथन में कसक भरी हुई थी। टगमगाती हुई ग्रीवा और बहते हुए आंसुओं को रोकता हुआ वह वृद्ध उस अनुपम दान को लेकर अपने पुत्र की मृतदेह की ओर जाने को मुड़ा। उसको संतुष्ट होकर लौटते देखकर अब क्षण भर के साथ ही उस दानवीर के मुख पर एक अस्पष्ट हंसी की रेखा खींच गई। कौन सा समाधान यह था उस हंसी में, सभी उसको समझ नहीं सकते थे। अर्जुन के हाथ में धनुष और भीम के कंधे पर रखी हुई गदा अब कांप रही थी। इतनी असीम सहन शक्ति देखकर भी वे यह नहीं जान पा रहे थे कि सुतपुत्र नहीं था, वह सूर्यपुत्र था। कौंतेय था, उनका उनके अनुरूप शोभित होने वाला ज्येष्ठ बंधु था, परंतु यह उनको अद्यापि विदित नहीं था। उसकी संतुष्ट आंखें अब भी घूमते हुए किसी को ढूंढ रही थी, दुर्योधन को। दुर्योधन जैसे ही सचेत हुआ वैसे ही दौड़ पड़ा, मगर जैसे पानी को काटता है वैसे ही चारों के घेरे को तोड़कर वह भीतर घुस आया। अंगराज, वह कर्ण को देखते ही बड़े मर्म भेदी स्वर में चित्कार कर उठा। आयुष्य में प्रथम बार उसकी कंजी आंखों में भी आंसू तैरने लगे। उसके सगे 80 बंधुगत प्राण हो चुके थे, परंतु उनके लिए वह कभी इतना दर्वित नहीं हुआ था जितना यथाकुल नहीं हुआ था। उसने आंखों के संकेत से दुर्योधन को अपने पास बुलाया। अब वह नितांत अंतिम दान करना चाह रहा था, अंतिम और महत्वपूर्ण दान, विचारों का दान। राजन, मेरी मृत्यु के साथ ही यह विनाशी युद्ध रोक दो। उसके थरथराते हुए होंठों को देखकर सभी व्याकुल हो गए। सचमुच ही उसका अंतरंग अथाह था। नहीं अंगराज, मित्र, तुम जैसा महापराक्रमी वीर मेरे लिए बलिदान स्वीकार करे और मैं मृत्यु के भय से समझौता कर लूं, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। यदि मृत्यु पितामह को, गुरु द्रोण को और आज तुमको भी घेर सकती है तो क्या मैं क्या और कोई अन्य किसी कोई अमर नहीं है। युद्ध नहीं रुकेगा, तुम्हारे लिए वह चलता रहे। दुर्योधन ने एक जलता हुआ कटाक्ष मेरे और अर्जुन पर डाला। दूसरे ही क्षण घुटने टेक कर उसकी विशाल भुजा को हाथ में लेकर इतना निग्रही कौरव नेता सिसकने लगा। चित्रसेन से भी अधिक भयानक स्वर में कर्ण ने दूसरे हाथ से थपथपाकर दुर्योधन को शांत किया। अब वह पृथ्वी के कण कण का त्याग करना चाहता था। दांत और कंठ से होने वाले अविरत रक्तस्राव से उसको बार बार ग्लानि होने लगी। अश्वत्थामा ने आगे बढ़कर उसका मस्तक स्नेह से अपनी जंघा पर रख लिया। रक्तस्राव से उसकी आंखों पर सतत निद्रा सी छाने लगी थी। मैं सोच रहा था कि दुर्योधन अब उससे इस अंत समय में उसकी अंतिम इच्छा पूछेगा, परंतु दुख के आवेग से उसे इसका भान भी नहीं रहा। दुर्योधन का जीवन अब दूरी से छूटे हुए रथचक्र जैसा हो गया था, दिशाहीन। उस दानवीर की सांस अब लड़खड़ाने लगी। अधमुरे नेत्र सूर्यबिंब से एक रूप होने लगे, विलीन होने लगे। उसका सुंदर शरीर अचल होता जा रहा था। उसकी जोरदार श्वासोच्छ्वास के साथ लय से ऊपर नीचे होने वाला विशाल वक्षस्थल पर पहना हुआ लवत्राण अब धीरे धीरे स्पंदित होने लगा। उसकी अंतिम इच्छा पूछने का सब प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व अब मेरे ऊपर आ रहा था, केवल मुझ पर। तत्क्षण मैं आगे बढ़ा, उसके कटे हुए कानों के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, कौंतेय, अंतिम इच्छा। उसने मुदते हुए निमिलित नेत्र सब प्रयास पुनः खोरे। दो अश्रुबिंदु उसकी आंखों में तैरते हुए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। किसके थे वे? दुख के, पश्चाताप के, धन्यता के, कृतार्थता के? मैंने उसको कौंतेय कहा। इसे सुनकर धन्य होने के साथ वह भी धीरे धीरे कहने लगा, द्वारकाधीश, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ही मेरा अंत संस्कार एक कुमारी भूमि पर करना। कुमारी भूमि, उसके शब्द अत्यंत क्षीण हो गए थे। कुमारी भूमि, अर्थात वह ठीक ठीक क्या चाह रहा था या अच्छी तरह समझ में नहीं आया था, इसीलिए मैंने धीरे से कहा, हाँ, कुम्हारी, जिस भूमि पर कभी भी तृणांकुर न उगे हों, उगने वाले न हों मेरे दुख, वे पुनः पुनः इस मर्त भूमि पर कभी किसी भी स्वरूप में न उगे, इसलिए ये पंच महाभूत कुमारी भूमि में विलीन। उसके स्वर अब अत्यंत अस्पष्ट होते जा रहे थे। आश्चर्य का धक्का देने वाली उसकी अद्भुत अंतिम इच्छा सुनकर मैं भी विस्मित हो गया, सुन्न हो गया। वह स्पष्ट शब्द बोल रहा था। वह कुछ और तो नहीं कहना चाहता था, यह सोचकर मैं अपने कान उसके होंठों को एकदम निकट ले आया, ध्यान से सुनने लगा, एकाग्रचित्त से। वह अस्पष्ट अधूरे शब्दों का उच्चारण कर रहा था, ली माता माता ड न। वह क्या कहना चाहता था या कोई भी स्पष्ट नहीं बता सकता था। वह वृशाली कह रहा था या पांचाली, वह कुंती माता कह रहा था या राधा माता, शोण कह रहा था या अर्जुन, कुछ भी बोध नहीं हो रहा था। अब उसके मुख से अस्पष्ट शब्द भी निकलने बंद हो गए। सूर्यबिंब पर केंद्रित नीली पुतलियां तिल भर में भी नहीं हिल रही थी। उसके होंठों के हिलने से वह क्या कह रहा था यह मैं जान सकता था। अर्घदान करने वाले एक निष्ठावान सूर्यपुत्र के वे अंतिम शब्द थे। होंठों की गति से वे निश्चय गायत्री मंत्र के दिव्य बोल होने चाहिए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। अकस्मात उसके होंठों की वह हलचल भी क्षण भर में बंद हो गई। सबने सांस रोक ली। उसकी सांस पूर्ण रूप से रुक गई। छाती पर स्पंदित होने वाला लौह त्राण शांत हो गया। महान तेजस्वी आंखें चकाचौंध से भर देने वाली प्रखर तेज की प्रचंड ज्योति तत्क्षण उसके हृत कमल से निकलकर आकाश मंडल में पश्चिम दिशा पर अमीन टीले के ऊपर सरकते हुए लाल लाल विशाल सूर्यबिंब की तीव्र गति से झपटी। दूसरे ही क्षण उसकी प्रखर तप्त वह ज्योति हिरण्य गर्भ में विलीन हो गई। उस महान तेज ने आसपास खड़े सभी के नेत्र चकाचौंध से भर दिए। अंधेरा छा गया। उस मृत्युंजय महावीर का महानिर्वाण हो गया। 14. कर्ण के गिरने पर टीले के मस्तक पर अस्त होते हुए सूर्य भगवान क्षण भर अचानक सतेज होकर दूसरे क्षण को भी प्रतीक्षा न कर तत्क्षण क्षितिज के पार चले गए। सारे पश्चिम दिशा धुंधली दिखाई देने लगी। चमचमाते हुए उसकी मूंदे वायु के झोंकों से गिरकर विलीन हो गई। चारों दिशाएं प्रकाशहीन हो गई। धरती दीन हो गई। अश्वत्थामा ने आवेग से बढ़कर कर्ण के भव्य कपाल का दीर्घ आग्रहण किया। दुर्योधन ने उसका हाथ लेकर अपने मस्तक से लगाया। चित्रसेन उसके उन संकुचित होते गए स्वच्छ चरणों पर गिर पड़ा। कर्ण की दिव्यात्मा जिस दीप्यमान चिरंतन प्रकाश केंद्र से आई थी उसी तेजोनिधि में पुनः विलीन हो गई। फिर भी उसकी देह इतनी तेजस्वी दिखाई दे रही थी मानो सब प्राण हो। कुछ समय पहले कर्ण ने मेरे चरणों पर जो मुकुट अर्पण किया था वह मैंने उठाया और पुनः उसके घने सुनहले केशों पर हौले से रख दिया। कुरुओं का तीसरा सेनापति चिरनिद्रा में सो रहा था। उसके कंठ में धसा हुआ आंजलिक बाण अश्वत्थामा ने बाहर निकाला और अपने सिर पर सदैव बंधे रहने वाले धवल वस्त्र से उसका सूर्यबिंब जैसा गोल मुख ढक दिया। पांडवों को लेकर मैं शिविर की ओर चला। सारा वातावरण भयानक और विभत्स लग रहा था। सभी चुप थे। दूर कहीं चिटहरी अशुभ सूचक कर्कश ध्वनि कर रही थी। दूर एक ऊंचा सा श्वेत अश्व थक कर कीचड़ में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। जीवित घोड़ा और बैठा हुआ उसको आश्चर्य हुआ। पांडवों के साथ मैं अर्जुन के शिविर में आया। मैं चुप था। द्वार में खड़ी राजमाता को देखते ही मेरा मुख और अधिक शुष्क हो गया। अर्जुन ने समझा कि आज सम्रांगण में कर्ण को धराशायी करने के कारण प्रसन्न होकर वे शिविर पर तक दौड़ आई हैं। मात आशीर्वाद दो। तत्क्षण आगे बढ़कर उसने अपनी माता के चरणों में वंदन किया और अभिमान से आशीर्वाद मांगा। माता के मुख में लगा हुआ अंशु का छोर उसको दिखाई पड़ जाता। इतना प्रकाश आसपास नहीं था। इतना भान भी अर्जुन को नहीं था और अब दिखाई पड़ भी जाए तो उसका क्या उपयोग। मैंने राजमाता की थरथराती पीठ पर हाथ रखकर उनको शिविर के भीतरी कक्ष में ले जाने के बहाने उस अवसर को संभाला। क्षण भर के लिए ही मैं वे और पांडव हम तीनों इकट्ठे हुए, परंतु युद्ध वस्त्र बदलने के लिए पांडव बाहर चले गए। शिविर में केवल मैं और कुंती देवी ही रह गए थे। तब उस महान स्त्री के मन के संयम का बांध टूट गया। वह सिसकने लगी। केशव, अरे इसका अंतिम दर्शन तो कंठ अवरुद्ध होने के कारण वे अधिक न कह सकी। दोनों हथेलियों में छिपा हुआ मुख ऊपर भी न उठ सकी। वीर जननी राजमाता, शोक रोको। एक तो अब चला ही गया है, हाथ में जो पांच हैं उन्हें तो मत गवाओ। आज आधी रात को मैं तुम्हें उसके दर्शन कराऊंगा। कम से कम इस समय तो रहस्य को रहस्य ही बने रहने दो। उसकी उन्होंने आंखें पोंछी। अनेक विडंबनाओं और अनेक घटनाओं को देखने वाले निग्रही वीर माता जब निशीथ में कर्ण के देह के पास पहुंची तब वह ऐसे कांपने लगे जैसे झंझावात में लाल इंद्रायण की कोई बेल थरथर कांप रही हो। धरती में पड़े हुए उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। मैं उनका हाथ पकड़कर उनको बलपूर्वक उनके सूर्यपुत्र के पास लाया। उनमें साहस ही नहीं था कि हथेलियों से ढके हुए अपने मुख को ऊपर करती। कर्ण के सिर पर से अश्वत्थामा का आच्छादन मैंने अलग किया। कर्ण ऐसा शांत लग रहा था मानो सोया हुआ हो। उसकी सुनहरी मृतदेह मशाल के धूमिल प्रकाश में भी चमक रही थी। बड़े साहस से दुख पर से हाथ मुख पर से हाथ हटाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया और दूसरे ही क्षण मेरे लाल चीख कर वे अचेत होकर नीचे गिरने लगी। मैंने उन्हें संभाला। अब मैं अकेला ही तो उनको संभालने वाला था। 15. युद्ध का 18वां दिन भी समाप्त हो गया। भीम ने दुर्योधन की जंगा चूर चूर कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पांडवों की निर्विवाद विजय प्रस्थापित हो गई। 19वें दिन की संध्याकाल की लंबी लंबी छायाएं रणक्षेत्र में अस्त व्यस्त हो गई थी। सम्रांगण प्रेतों से खचाखच भरा हुआ था। अमीन टीले पर ऊपर से नीचे तक कहीं चार अंगुल भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ शव पड़े हुए न हो। दूर एक शुभ्र अश्व दिखाई दे रहा था लेकिन था बैठा हुआ ही। मेरा कौतूहल जागृत हो गया और मैं घोड़े की ओर चलने लगा। कुछ देर से मैं कर्ण की देह ढूंढ रहा था। घोड़े के पास आते ही मुझे आश्चर्य का आघात लगा। मेरा संदेह सच निकला। वह कर्ण का वायुजीत ही था। वह अपने स्वामी के शव के पास बैठा हुआ था। अपनी पूंछ का चंवर स्वामी के मुख पर डुला रहा था। मेरा हृदय भर आया। डबडबाई आंखों से मैंने उस मूक पशु को देखा। पांडवों के विजय का पचा खुचा संतोष भी नष्ट हो गया था। रह रहकर बस प्रकृति पर आश्चर्य हो रहा था। प्रतोद दाएं हाथ से बाएं हाथ में लेकर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही स्नेह से उस पशु को मैंने थपथपाया, उसकी संपूर्ण शुभ्र त्वचा कांप उठी। सारथी के रूप में मेरा जो कुछ अनुभव था वह सफल हो गया। चकचक करके जैसे ही मैंने संकेत किया, वह जातिवंत पशु समझ गया और बलपूर्वक खुर धरती में गड़ाकर तत्क्षण उठ खड़ा हुआ। उसके स्वामी की सुनहली मृतदेह को मैंने उठाकर उसकी विशाल पीठ पर लाकर रखा। स्वामी की अंतिम देह अच्छी तरह संभाल कर ले जानी चाहिए, यह सावधानी रखता हुआ वायुजित अश्व धीरे धीरे चलने लगा। हमको अमीन टीले पर चढ़कर जाना था। रास्ते में मैंने कृपाचार्य के शिविर में जलती हुई मशाल हाथ में ले ली। मैं और वायुजीत चढ़कर टीले पर आए। उसी समय अंतर्धान होते हुए सूर्य नारायण की अस्पष्ट कोर क्षितिज के पार डूब गई। टीले के इस शिखर पर विस्तृत काली पथरीली भूमि थी। अग्नि संस्कार की सामग्री वहां तैयार रखने की व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी। उस कुमार भूमि पर चंदन की लकड़ियों की चिता रची गई थी। वायुजीत की पुष्ट पीठ पर से मैंने अपने हाथों से कर्ण को उठाया और उसे चिता पर रख दिया। मशाल हाथ में लेकर मैंने क्षण भर उसका मुख देखने का प्रयत्न किया। कांपते हाथों से लौ मैंने लकड़ियों को ढेर में लगाई। थोड़ी देर में लपटों के लाल पीले अग्नि विग्रह आकाश में झपट्टा मारने लगे। अग्नि केंद्र से जन्म लेने वाला वह आकाशपुत्र क्षण भर की आग पचाकर अब शांत अंत में अग्निमय हो रहा था। उसी समय वायुजीत हिनहिनाता हुआ उछल कूद करने लगा। मैंने मशाल चिता में फेंक दी और उस पशु के पास आया। उसको भी संभालना आवश्यक था। मैं उसको पुचकारता हुआ उसके आयाल को सहलाने लगा। उसका साथ मुझे भी स्मरणीय लगने लगा। मेरा मन सुन्न होता जा रहा था। संज्ञाहीन मन से मैं चिता की ओर देख रहा था तथा वायुजीत का आयाल पुनः पुनः सहला रहा था। अचानक वह श्वेत अश्व फुरफुरा उठा और कान उठाकर जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते की ओर ग्रीवा मोड़ कर देखने लगा। शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए एक स्त्री धीरे धीरे आगे आ रही थी। मैं सिहर उठा, वह वृशाली थी। एक तक निश्चल आंखें, देह पर भीगे वस्त्र, धीरे धीरे एक एक पैर रखते हुए वह चली आ रही थी। आकाश कन्या जैसी उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। इधर उधर बिल्कुल मैंने देखते हुए वह सीधी चिता के पास जा रही थी। शुभ्र पाषाण की चल मूर्ति की तरह कंधे पर रखा अंशुक नीचे गिर पड़ा था। उसका उसको भान नहीं था। मेरे सामने होती हुई वह आगे बढ़ी और एकदम सामने चिता में प्रविष्ट हो गई। मैं स्तब्ध रह गया। भान होने पर मैंने वैशाली को मन ही मन आशीर्वाद दिया। प्रतूत के दंड से उसका अंशुक चिता में डालने के लिए उठाया। आंचल में गांठ लगे हुए देखकर मैंने उसको चिता में न फेंककर आश्चर्य से पीछे कर लिया। अग्नि में प्रवेश कर पति को चिरालिंगन देने वाली जाने वाली सती को यह मोह किसका था। संदेह से मैंने गांठ खोली। कपड़े का टुकड़ा, फूटे हुए घड़े का एक टुकड़ा में सम्मिलित हो गया। उस टुकड़े को चिता में फेंकने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया, किंतु कर्ण के अंत संस्कार और विशाली के आत्मसमर्पण की समर्पण की स्मृति के रूप में पास रखने की इच्छा ने फिर मैंने हाथ नीचे कर लिया और उस टुकड़े को पीताम्बर के एक छोर में बांध लिया। प्रतोद कंधे पर रखकर वायुजीत का कंठबद्ध पकड़कर मैं लौटने लगा। टीले की ढलान उतरने लगा। मुझको ढूंढते हुए पांडव चिता की लपटें देखकर टीले पर चढ़कर दौड़कर चढ़ने लगे थे। मैं स्पष्ट देख रहा था, फर फर करती मशालों की संख्या 5 थी। वे पांडव ही थे, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। बहुत देर हो चुकी थी।